الحمد لله اللهم الذي اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامه صديقه انا رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه تو اس کلاس میں ہم اپنے حضرت فیض الفتح رحمۃ نقشبندی تمام برکات ان کی کتاب مثالی عورت میں سے مثالی ماں کا مضمون پڑھ رہے ہیں. اس میں جو عنوان چل رہا تھا وہ چھوٹے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کی جائے. چھوٹے بچے اب یہ تو پہلا ماں ڈیفائن کرتی ہے کہ چھوٹے کیا ہوتے ہیں, کب بڑے ہو جاتے ہیں وغیرہ, تو ڈپینڈ کرتا ہے, بات ہو چکی ہے پیچھے کہ جب اپنی مرضی آتی ہے تو وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں اور جب اپنی مرضی آتی ہے تو وہ دے آر ٹو بگ, میں اب ان کو ہینڈل نہیں کر سکتی, تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں کم سے, اپنا دل چاہتا ہے تو پھر وہ 45 سال کی بھی ہو رہے ہیں تو بھی وہ چھوٹے ہی رہتے ہیں. بہرحال تو یہ جو پوائنٹس ہیں وہ ہم نے تقریباً پڑھ لیے تھے. اب آخری پوائنٹ ہے کہ میک ریڈنگ ٹائم پری ریکوسٹ فار پلینگ ٹائم. ٹھیک ہے, یعنی بچہ جب کھیلنے کا وقت مانگے تو شرط لگائیں کہ اگر تم 15 منٹ پڑھو گے تو تمہیں آدھا گھنٹہ کھیلنے کو مل جائے گا. اس طرح پھر بچہ پڑھائی کو زیادہ وقت دینا شروع کر دے گا. تو 15 منٹ پڑھنے کے اوپر آدھا گھنٹہ کھیلنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی چھوٹے بچوں کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ زیادہ کھیل اور کم پڑھائی, اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو جو دنیا کی ڈیفینیشن ہے ماؤں کی نہیں بلکہ جو دنیا میں معروف تعریف ہے بڑے ہونے کی, وہ یہ ہے کہ اب پڑھائی کا وقت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور کھیل کود کا وقت جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انلیس کہ آپ خود کوئی کھلاڑی ہی ہوں, ٹھیک ہے, تو پھر جو ہے وہ آپ کا پڑھائی کا ٹائم یا تو ہوتا ہی نہیں ہے یا بہت تھوڑا سا ہوتا ہے, اور سارا کا سارا ٹائم جو ہے پھر کھیل کود میں لگتا ہے, تاکہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی کھیل کود کی بنیاد پر مل جاتا ہے. تو ہمارے یہاں سیٹس ہوتی ہیں نا کہ جی یہ فلانے ایتھلیٹ کے لیے یہ اتنی سیٹس ہیں اور فلانے پلیئر کے لیے اتنی سیٹس ہیں, کیونکہ یونیورسٹیز والوں کو اپنی ٹیم بھی بنانی ہوتی ہے نا, کرکٹ کی ٹیم بنانی ہے, فٹ بال کی ٹیم بنانی ہے, یا پھر ایتھلیٹکس کے اندر کوئی انہوں نے تمغے ان کے لینے ہیں, تو کہتے ہیں یار اب پڑھنے لکھنے والے لوگ تو پھر ہمیں اسپورٹس کے تمغے دلانے سے رہے, تو جو ہے نا وہ ہم پیور ایتھلیٹس کو جو ہے نا وہ ہم ایڈمیشن دے دیتے ہیں, بے شک وہ پڑھائی لکھائی نہ کریں ہمیں کیا. ٹھیک ہے, تو وہ کھیل کود میں آئیں گے, پھر ہم ان کو ٹورنامنٹس میں بھیجیں گے اور پھر ان سے تمغے جیت کر کے ہمارے یونیورسٹی کا نام بڑھے گا, اس یونیورسٹی نے اتنے ٹورنامنٹ جیتے تھے. اور ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر لوگ جو ہے وہ پیور کھلاڑی بننا شروع ہو گئے, کھلاڑی جو ہے وہ ہمارے آئیڈیلز بننا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے, حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی رائٹ, جنہوں نے ہمیں بتانا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو انہوں نے تو پھر ان لوگوں کو جو ہے نا وہ معاشرے کے سب سے کمتر لوگ فرمایا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کھیل کود والے جو ہوتے ہیں نا یہ سب سے کمتر سب سے رذیل لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ یعنی ہمیں پیشن گوئی ہو, یا بلکہ نبوت کی جو وہ ہوتی ہیں کہ بھائی کیا کہتے ہیں اس کو, پیشن گوئیاں ہی کہتے ہیں شاید اردو میں, تو کہ بھائی ایک وقت آئے گا کہ جب معاشرے کے سب سے رذیل لوگ جو ہیں نا وہ سب سے برتر سمجھے جائیں گے, اور آج یہی ہو رہا ہے کہ سپورٹس پرسنالٹیز کو جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پیسے بھی سب سے زیادہ ان کو ملتے ہیں, ملینز آف ڈالرز ملتے ہیں ان سپورٹس کے کھلاڑیوں کو, اور محبت بھی انہی سے سب سے زیادہ کی جا رہی ہوتی ہے, اور جو ہے نا وہ انہی کو جو ہے وہ سب سے زیادہ عزت بھی دی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور تو اور دیندار دنیا دار تو کیا, دیندار لوگوں نے بھی ایک اچھا جو ہے نا وہ حلال انٹرٹینمنٹ کے ڈیفینیشن نکالی ہے. ٹھیک ہے نا, تو دنیا دار تو پھر وہ ناچ گانے والوں کو بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان سے. ٹھیک ہے نا, پاپ سٹارز سے بھی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں, اور جو ہے وہ کانسرٹس کے اندر بھی جاتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے وہ پیسے بے تحاشا دیتے ہیں, لیکن اب جو بیچارے دیندار بن جاتے ہیں تو وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے نا, آخر وہ کچھ تو خیال کرنا پڑتا ہے نا دین کا بھی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا پھر حلال انٹرٹینمنٹ نکالی کہ یہ جو کمرشل اسپورٹس ہوتے ہیں نا, چاہے فٹ بال ہو چاہے ہاکی ہو, ہاکی تو خیر بیچارہ ختم ہی ہو گیا, लेकिन फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बास्केटबॉल हो, इस किस्म के जो भी कमर्शियल स्पोर्ट्स है ना, उनको जो है ना, ये तो जी हलाल है, इसमें इसमें क्या हर्ज है, इसमें हर्जी क्या है, इसमें कौन सी जो है वो खराबी है। और तो उन्होंने कहा जी अपने बच्चों को हम इन कमर्शियल स्पोर्ट्स के पीछे लगाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो शराब से तो बच जाए ना, ताकि वो जो है ना वो डांस से तो बच जाए, ताकि वो जो है वो क्या कहते हैं, यानी गैर मखलूत इख्तलात से तो बच जाए, तो वो फिर स्पोर्ट्स पे लगा देते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे जो है ना, फिर वो इन्हीं रजील इंसानों को, फुटबॉल प्लेयर्स को और क्रिकेट प्लेयर्स को, वो जो है वो अपना आइडियल बना देते हैं। और जब आइडियल बना लेते हैं तो फिर बेसिकली इट फिनिश इज एवरीथिंग, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसके बाद जो आपका आइडियल हो जाता है ना, जिससे आपको मोहब्बत हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद आप हर चीज भूल जाते हैं, और फिर वही वही होता है, बस महबूब ही सब कुछ होता है, बाकी हर चीज जो है वो फिर पस्त हो जाती है उसके सामने। तो ये जो स्पोर्ट्स के को जो हलाल एंटरटेनमेंट जो दीनदार माँ बाप समझ के बैठे हुए हैं ना, उनको अंदाजा नहीं है कि वो किस अजीम धोखे का शिकार हुए, और वो अपनी औलाद के साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, उनको नहीं पता इस बात का, ठीक है। तो इन स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज से जो है ना वो बचाना जरूरी है, और इनको बच्चों से बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि अपने औलाद को इन स्पोर्ट्स के देखने से ही दूर रखें, इन स्पोर्ट्स को फॉलो करने से ही दूर रखें। अगर उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया तो वो इन पर्सनालिटीज की मोहब्बत से नहीं बच सकेंगे, और जब वो उनकी मोहब्बत से नहीं बच सकेंगे ना, तो फिर एवरीथिंग एल्स कम्स विद इट, सारी बुराइयां फिर उसके साथ आ जाती हैं। बहरहाल, तो प्लेइंग टाइम की बात हो रही थी, तो रीडिंग टाइम जो है वो प्लेइंग टाइम का प्रीरिक्विजिट बनाए। तो ये छोटे बच्चों में जो है वो इसका प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है, और बड़े बच्चों के अंदर इसके प्रोपोर्शन डिफरेंट होता है, यानी वहाँ पे ज्यादा पढ़ाई का टाइम और यहाँ कम खेलने का टाइम, और यहाँ पे ज्यादा खेलने का टाइम और कम पढ़ाई का टाइम, लेकिन पढ़ाई और खेलना जो है ना ये साथ साथ चलने जरूरी है। कुछ बच्चे जो है वो कुछ कुछ माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाई पे इतना ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं कि खेलने के लिए कोई टाइम नहीं रखते, तो उनको ये बात याद रखने की जरूरत है कि भाई जब आपका बेटा, खसूसन बेटा जो है ना, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी फिजिक्स डिफरेंट बनाई है, अभी तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई ना, वही कमजोरों के ऊपर अल्लाह ताला फरमाते रहते हैं। तो अभी क्या हुआ ओलंपिक्स में, हमें लोगों ने बताया कि जी एक बॉक्सर साहिबा थी, ठीक है, पता नहीं कौन सा मुल्क की थी, स्पेन की या अर्जेंटीना की, वो हकीकत में औरत थी, वाकई औरत थी, मतलब ये वक्त आ गया है कि हमें वाकई औरत बोलना पड़ता है। और जो दूसरी तरफ उनके मुकाबले पर जो खातून आई थी ना, वो वाकई औरत नहीं थी, वो ट्रांसजेंडर थी, ठीक है, यानी वो था असल में, तो वो था, ठीक है, लेकिन उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था और औरत बन गया था, और इन खबीसों ने जो है वो उसको औरतों के मुकाबले में एज एन औरत ही एक्सेप्ट किया हुआ था। तो अब जो है ना ये बॉक्सिंग का मैच हुआ, तो पता नहीं 8 सेकंड के अंदर ही, या पता नहीं कितने सेकंड्स के अंदर ही जो है ना वो भाग गई, से जो असल औरत थी ना वो भाग गई, ठीक है, कि भाई ये किसके साथ मेरा मुकाबला करवा दी, ये तो मर्द है, ऐसा उसने उसको टिका के मारा है ना कि इसके तो दम ही निकल गया ना। हालांकि जो तो बॉक्सर औरत होती है वो दूसरी औरतों के मुकाबले में कितनी मजबूत होती होगी, ठीक है ना, उसने सारी जिंदगी ट्रेनिंग करके वो ओलंपिक में पहुंची है ना, तो कोई कमजोर किस्म की तो औरत नहीं होगी वो, लेकिन एक मर्द बॉक्सर का वो मुकाबला नहीं कर सकी, चंद सेकंडों से ज्यादा वो खड़ी नहीं रह सकी उसके सामने। अब कर लो जो करना है ना, औरत मर्द बराबर और जेंडर इक्वालिटी और फलाना ठिकाना, अल्लाह ताला ने ही नहीं कहा। अब ये सारे अब परेशान हुए हैं कि अब ये हम किधर पहुंच गए, हमने अपने आप को किधर पहुंचा दिया, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर को अब बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स और जो है वो सारे उन्होंने लॉज बना दिए हैं इसके ऊपर, अब कोई कह भी नहीं सकता कुछ इसके खिलाफ, वरना वो खुद डिस्क्वालिफाई हो जाएगा ओलंपिक्स में से, ठीक है। लेकिन वो कहता ना, ना ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, या ना पाए रब मानदन या ना जाए रफ्तन, क्या होता है वो फारसी का, ना उधर जाते बनती है ना वापस आते बनती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना वो ये शर पसंदों को आपस में लड़वा देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी चंद दिनों पहले हुआ था, मौलाना साहब जो है ना वो दुआ किया करते हैं, अल्लाह इन 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 जो शर वाले लोग हैं ना, इन्हीं को आपस में लड़वा दे, और वाकई अल्लाह ताला ने लड़वा दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ट्रांसजेंडर के सपोर्टर्स और जो इनके खिलाफ हैं उनको आपस में अल्लाह ताला ने अभी लड़वाया हुआ है, अल्लाह ताला और अल्लाह ताला करे और बड़े इनकी लड़ाई आपस में इनकी, ठीक है। तो भाई लड़के की अलग नीड्स होती हैं, लड़की की अलग नीड होती है, उसकी स्विमिंग नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लड़की के लिए जो है वो एक्सरसाइज टाइप की कोई चीज़ बताई जो कि घर के अंदर वो कर सकती है, डिफरेंट बनाया ना अल्लाह ताला ने। इस पर ऐसे लड़के के लिए कहा जाता है कि उसको बाहर निकल करके कम से कम 1.5 घंटा से 1 घंटा तक जो है वो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, चाहे वो हिफ्स कर रहा हो, चाहे वो स्कूल जा रहा हो, चाहे वो ओ लेवल्स कर रहा हो, चाहे वो किसी किस्म का भी कोई काम कर रहा हो, एटलीस्ट 1.5 घंटे से लेके 1 घंटे तक रोजाना उसकी फिजिकल एक्टिविटी मेक श्योर के वो करे, ठीक है। तो एक तो ये है कि सारा पढ़ाई नहीं, दूसरा ये है कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। हमने पढ़ाई का मतलब जो है ना वो सिर्फ ये है कि जी जो करिकुलम की बुक है वही पढ़ाना है, और पढ़ के फारिग हो गया तो दोबारा पढ़ाना है, फिर पढ़ के फारिग हो तो और दोबारा पढ़ाना है, होमवर्क करके फारिग हो गया तो और होमवर्क दे दो, पिछली क्लास के अंदर ये वाली भी बात हुई थी, और होमवर्क दे दो, राइट। तो भाई मुतालिया कहाँ कब आएगा, रीडिंग कब आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो हजरत यहाँ पे वो होमवर्क पाइल अप करने का नहीं फरमा रहे हैं, बल्कि मुताले की बात कर रहे हैं, रीडिंग, ठीक है। असल इल्म तो रीडिंग से आता है, मुताले से आता है ना, वो है बचपन में सुनते थे किताब जो है वो सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो तो बड़े होकर पता चला कि हर किताब अच्छी दोस्त नहीं होती, बल्कि हर किताब मतलब किताब जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन भी हो सकती है, डिपेंड करता है ना कौन सी किताब है, किसने लिखी है वाली किताब। तो अच्छी किताब जो होती है ना वो सबसे अच्छी दोस्त होती है, बस इसमें अच्छे अच्छे को जो है वो ऐड कर दें, बुरी किताब जो होती है वो सबसे बुरी दोस्त होती है, ठीक है। लेकिन अच्छी किताब को तलाश करना, अच्छी किताब को मुहैया करना, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो घरों के अंदर जो है ना वो अच्छी किताबें मौजूद होनी चाहिए, सबसे पहली जरूरत ये किताबें मौजूद होनी चाहिए। आज तो सबसे सस्ता तरीका है, चलो जो इंटरनेट पर बिठा दो, डिवाइस दे दो, अब जो है वो इंटरनेट खुद ही सर्च करेगा और खुद ही किताबें डाउनलोड करके पढ़ेगा। भाई इंटरनेट के ऊपर जो है ना फिर अच्छे बुरे की कोई तमीज नहीं होती, वहां पे अच्छी किताबें अगर मौजूद है तो सबसे घटिया और सबसे बुरी किताब भी वहां पे मौजूद है। तो अपना काम करना नहीं, अपने काम से जो है वो अब फरार की राह तलाश करना कि भाई इंटरनेट पर बिठा दो, अब वो जाने उसका काम जाने, नहीं, वालदैन का ये काम है कि वो अच्छी किताबें सर्च करें और वो खरीद करके घर में लेकर के आए, या अगर इंटरनेट अगर आप खरीद के घर पे नहीं लेकर के आ सकते, किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे किताबें आप नहीं खरीद सकते या महंगी हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इंटरनेट से डाउनलोड भी आप खुद करें, इंटरनेट से डाउनलोड भी आप खुद करें और उसको प्रिंट करके बच्चे को, ठीक है ना। और अगर प्रिंटर नहीं है घर में तो फिर क्या करें, तो भाई कम से कम थोड़ा सा पैसा जमा करके कोई ऐसी डिवाइस खरीद करके बच्चे को दें कि जो के इंटरनेट कनेक्टेड ना हो, जिसके अंदर खराफात और फजूलियात और वीडियो गेम्स और ये सारी चीजें ना हो, ऐसी की डिवाइसेस मौजूद हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप सिर्फ बुक रीडिंग कर सकते हैं, जो डाउनलोडेड बुक्स होती है ना पीडीएफ फॉर्मेट में हो, या वो क्या था वो उसका वो डिवाइस बड़ी आई थी जिसकी स्क्रीन भी बड़ी ऐसी होती थी कि बिल्कुल आंख के ऊपर जोर नहीं पड़ता था, क्या नाम है उस डिवाइस का, केस शायद उसका नाम था ना, किंडल, किंडल शायद उसका नाम था। तो ऐसी कोई डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, जिसके अंदर ऐसी एप्लीकेशन ना हो, वो सिर्फ बुक रीडिंग के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, और दिमाग और आंखों के ऊपर भी उसका बोझ ना पड़ता हो, ऐसी उसकी स्क्रीन होती हैं, खास स्क्रीन बनाते हैं वो रीडिंग के लिए, ठीक है। तो या तो किताब खरीद के लेकर के घर पे आए, या जो है वो डाउनलोड करके उसको प्रिंट करके बच्चों को दें, या ये कि कोई ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर फिर आप ये किताबें कॉपी कर दें उसके ऊपर, तो बच्चा उन डिवाइसेस से जो है वो किताबें पढ़ सकता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया है ये सारी टेक्नोलॉजी, अगर हम अकल समझ और दीन के फिक्र के साथ इस्तेमाल करें तो ये सारी आसानी है हमारे लिए, लेकिन अकल समझ के बगैर और दीन के फिक्र के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो कोई आसानियां नहीं है बल्कि मुसीबतें हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टीच बाय एग्जाम्पल, बच्चे को हमेशा मिसालें देकर सिखाया करें, जब बच्चे को मिसाल बताई जाती है तो उसके लिए बात समझना आसान हो जाता है। जैसे हमें भी मिसालों से बात समझ में ज्यादा आ जाती है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जो बातें समझाई हैं तो कितनी सारी मिसालें दे करके समझाई है ना, नेकों की भी मिसालें दी हैं और बुरों की भी मिसालें दी हैं, ताकि बात आसानी से बंदों के समझ में आ जाए। अल्लाह ताला जानते थे कि मेरे बंदों के लिए क्या चीज़ आसान है क्या चीज़ मुश्किल है। कोई सवाल इस पूरे के पूरे टॉपिक के ऊपर छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत पीछे, जरा अगर किताब है आपके पास तो वर्क गर्दानी करके पीछे देख लें कि कोई जहन में सवाल आता है, अगर हमें पता होगा उसका जवाब तो आपको ही देने की कोशिश करेंगे, नहीं पता होगा बाद में देने की कोशिश करेंगे। मुताले के ऊपर पिछली क्लास में भी काफी बात हो चुकी थी और अभी भी फिर से काफी बात हो गई, तो आगे चलते हैं। तो अगला उनवान है बलूगत की उम्र के बच्चों की तरबियत, यानी बलूगत की उम्र का मतलब क्या होता है कि बच्चा जो है ना, यानी बालिग होने वाला है, उसको बाकायदा फिका में कहते हैं करीबुल बुलूग, करीबुल बुलूग, यानी अब जो है ना वो उसके बाकी साइंस जो है वो बलागत के नमूदार हो गए हैं, बस जो फाइनल और आखिरी साइन होता है, आखिरी जो जो निशानी होती है बालिग होने की वो नहीं आई, बाकी इस निशान जैसे आवाज का मोटा होना, ये बलूगत की एक छोटी निशानी है समझ लें, ठीक है ना, बालों का जो है वो बदन के ऊपर आ जाना बेटे के लिए ठीक है ना, बल्कि बच्चों के भी बाल जो है वो आ जाते हैं, ये सब औरतों को ज्यादा पता है इन सब बातें, तो ऐसी निशानियों के आ जाने से बच्चा करीबुल बुलूग हो जाता है, पसीने का जो है वो स्मेल चेंज हो जाती है ठीक है, आवाज पसीना बाल ये सब जो होती है वो छोटी निशानियां होती है, फिर उसके बाद जब इहतमाम होता है तो उस वो फाइनल निशानी होती है, उसके बाद बस बालिग हो गया बच्चा इमीडिएट ठीक है ना, इहतमाम हुआ बालिग ठीक है, तो अब इसके लिए बच्चों से बात करनी होती है, उनको बताना होता है कि बेटा या बेटी जब ऐसा ऐसा हो, या बेटी के लिए फिर अलग निशानी होती है हैज को ना जाना ठीक है, तो पहले से जहन बना देना होता है, करीबुल बुलूग बच्ची जब पहुंच जाती है तो माँ उसका जहन बना दे कि बेटा जब ऐसा आपको कुछ नजर आए आपने मुझे बता ठीक है, बेटे का जो है वो बाप ने जहन बनाना होता है कि बेटा अब आपकी ये सारी चीजें हो गई हैं, अब अगर बिस्तर के ऊपर अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी तो आपने हमें बताना है, फौरन से छुपाना नहीं है, कोई ऐसी आपको परेशानी और वो डरने की बात नहीं है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, कोई बात ही ऐसी नहीं है, अल्लाह ताला का निजाम, सीधी सी आप उनको ये जवाब दें, अगर वो कहें ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला ने बनाया इस तरीके से, अल्लाह ताला का सिस्टम है, भूख लगती है तो खाना खाते हैं ये अल्लाह ताला का सिस्टम है बनाया हुआ, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं अल्लाह ताला का सिस्टम बनाया हुआ है ना, फिर उसके बाद जो है वो आपको बाथरूम जाना पड़ता है कि नहीं, अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया ठीक है ना, तो हर सवाल का बेहतरीन जवाब जो होता है अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया, अल्लाह ताला का यही तरीका है ठीक है, तो बच्चे को जो है वो बता दें और फिर जो है वो बालिग हो जाए, तो फिर बुलूगत के करीब का बच्चा या बालिग हो गया हो बच्चा तो उसकी फिर तरबियत, ये एक अलग पूरा का पूरा मजमून बांधा है तो यहाँ पे फरमाते हैं कि ये बातें तो थी छोटे बच्चों के बारे में जो अब तक हमने पढ़ी, अब एक बहुत अहम नुकता है जो उस वक्त का इस वक्त का अहम मसला भी है, आज के दौर का अहम मसला भी है, कि माँ बाप को अपने टीनेजर, अब टीनेजर इज नॉट द प्रॉपर टर्म फॉर बुलूगत ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि टीन एज, टीन किसको कहते हैं, थर्टीन, थर्टीन, 12 में टीन नहीं आता, 11 में भी टीन नहीं आता, तो गोरों ने जो अपनी डेफिनेशंस बनाई हैं, अब गोरों की डेफिनेशंस तो उनकी अपनी बनाई हुई डेफिनेशंस है, उनको क्या पता हकीकत का और हर चीज का, उनको तो नहीं पता ना, मुसलमान को पता होना चाहिए क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल से मुसलमान का ताल्लुक होता है, बहरहाल गोरों ने अपनी तारीफ बना दी टीन, तो 13 से लेके 19 तक की उम्र को वो टीन एज कहते हैं ठीक है, तो अंग्रेजी में तो फिर यही लफ्ज है जिस वजह से हम यही लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन हमारे यहाँ ये टीन वीन कुछ नहीं होता, बालिग बच्ची जो है वो 8 साल की उम्र में भी हो सकती है, 9 साल की उम्र में भी हो सकती है, 10, 11, 12, 13, और बच्चे जो है वो लड़के उमूमन आज के दौर के अंदर 12 से लेकर के 15 साल की उम्र तक जो है वो बालिग होते, 12 से जो है ना वो उनका बुलूगत के, यानी आज के दौर में लड़कों का ऐसा पता चलता है ठीक है, लड़कियों का इससे भी जल्दी, और इसका ताल्लुक जो है ना गिजाओं के साथ होता है, आजकल की गिजाएं ऐसी हो गई हैं कि जितनी कि कम उम्र के अंदर बुलूगत हो रही है, वरना पहले इतनी कम उम्र में बुलूगत नहीं होती। ठीक है, ऐसी वजहें बन गई हैं कि ये मसले जल्दी आना शुरू हो गए। बहरहाल, तो बुलूगत की उम्र जो है ना, उसके बारे में फरमा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत करना, माँ बाप को अपने बुलूगत की उम्र के बच्चों की तरबियत करना मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि हम जिस जहालत के बैकग्राउंड से आए हैं, पीएचडी वाली जहालत, एमफिल वाली जहालत, मास्टर्स के साथ जहालत, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जहालत जो है ना, वो जो जो जरूरी इल्म था उसके अंदर हमारी जहालत है, और जो एडिशनल इल्म था या फरूई इल्म था या नफली इल्म था, वो उसमें हमने पीएचडी किया हुआ है। ठीक है, तो हमें तो इतना नहीं पता ना कि बालिग कब होता है बच्चा, हमें तो इतना नहीं पता हम कब बालिग हुए थे। ठीक है, आज भी कितने वालदैन को बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है बालिग होना। ठीक है, हत्ता के अच्छे खासे दीनदार हैं, उनको भी घर में कुछ नहीं पता कि बच्चे के साथ क्या करना है। ठीक है, तो ये इन तो सीखने से आता है ना, पूछने से आता है, अगर नहीं पता है तो भाई सीखें। ठीक है, तो इस वजह से अब बलागत का ही कुछ नहीं पता, तो फिर जाहिर है इसका भी कुछ नहीं पता कि क्या उसको सिखाना है, क्या उसको पढ़ाना है। ठीक है, जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है जो चीज़ पता नहीं होती है मुश्किल होती है इंसान के लिए। तो फरमाते हैं कि इस बारे में चंद बातें जहन में रखें। ठीक है, अब तो आ रही है तरबियत वाली बातें। हमने अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताई है कि बलूगत की उम्रें क्या होती हैं, बलूगत की निशानियां क्या होती हैं। ठीक है, मिसाली बेटा का जो लेक्चर था, तो उसमें मर्दों के साथ और भी ज्यादा तफसील के अंदर हम गए थे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक, बेटे की बलूगत के बारे में। तो अब तरबियत की बातें जहन में रखें कि व्हाट आर द चेंजेस इन द टीनेजर्स, यानी नौजवानी की उम्र में कदम रखते बच्चों में क्या तब्दीलियां होती हैं। तो बलूगत ही को जवानी कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि वो नई नई जवानी होती है, तो इस वजह से उसको नौजवानी कहते हैं। इसका ताल्लुक 9 के डिजिट के साथ कोई नहीं है, 9 का मतलब है नई। ठीक है, सुबह 9, नई सुबह अभी तुलू हुई है तो उसको सुबह 9 कहते हैं उनको। तो नौजवानी की उम्र में बच्चों में क्या तब्दीलियां होती हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि दे आर गोइंग थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल कहते हैं जी बिल्कुल फर्द। ठीक है, तो उनके अंदर अपनी इनफरादियत और पहचान का अमल शुरू हो जाता है, वो बलूगत को पहुंच रहे होते हैं। उनके अंदर हॉर्मोनल चेंजेस, जिस्मानी तब्दीलियां बहुत ज्यादा हो रही होती हैं। हॉर्मोनल चेंजेस, हमारी बदन के अंदर अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स बनाए हैं, ऐसी डिवाइसेस बाकायदा बनाई हैं कि जिनके अंदर से जो है ना, वो सिक्रीशंस होती हैं, उनके अंदर से एसिड्स निकलते हैं, उनके अंदर से जो है वो, यानी ऐसी जो है वो केमिकल्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके घर के अंदर अगर कोई, यानी ह्यूमिडिफायर, तो ह्यूमिडिफायर जो है ना, वो उसके अंदर से जो धुआं निकल रहा होता है या स्टीम निकल रही होती है, पतीली के अंदर से स्टीम निकल रही होती है, तो गोया कि पतीली जो है ना, वो एक ग्लैंड की मानी है, और उसके अंदर से जो स्टीम निकल रही है, वो उस ग्लैंड की जो है वो हार्मोनल सिक्रीशंस कहलाती है। तो ये हमारी बदन के अंदर जो है ना, वो होती हैं। नॉर्मली जितना अल्लाह ताला ने मिकदार बनाई है, उतनी सिक्रीशंस होती हैं, लेकिन जब कोई बीमारी हो जाती है या बाहर से कोई ऐसे अनासिर वो असरअंदाज हो रहे होते हैं बच्चे के ऊपर, तो ये सिक्रीशंस जो है ना, ये एब नॉर्मल हो जाते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पर, अब पता नहीं अब ये डॉक्टर्स की टर्म्स हैं, मुझे तो नहीं पता इनका, लेकिन मिसाल के तौर पर अगर जो है वो 3 मिलीलीटर, पता नहीं अभी ज्यादा कह रहा हूँ कम कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर किसी ग्लैंड में से जो है ना, वो सिक्रीशन थायराइड की इतनी 3 मिलीलीटर निकलनी थी, बहुत ही ज्यादा होगी मेरे ख्याल में, लेकिन जितनी भी निकलनी थी, तो अब जो है ना, ये थायराइड सिक्रीशन जो है वो किसी वजह से बढ़ गई तो ये एबनॉर्मल हो गई, किसी वजह से ये कम हो गई तो ये एबनॉर्मल हो गई। ठीक है, तो ये एबनॉर्मैलिटी किस वजह से होती है, या तो कोई अंदर का सिस्टम खराब हो गया जिसकी वजह से ये सिक्रीशन जो है वो ज्यादा या कम हो गई, या ये कि बाहर से कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो रहे हैं कि जिसकी वजह से सिचुएशन बढ़ रही है या कम हो रही है। डिप्रेशन, उसकी वजह से कोई सिचुएशन जो है वो जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हो रही है। अभी डिप्रेशन बाहर के माहौल की वजह से उसके ऊपर आ रही है, ठीक है। या ये कि गंदी तस्वीरें, जो बच्चा है, लड़का है, करीबुल बुलूग है, वो गंदी इमेजेस देख रहा है, गंदी वीडियोस देख रहा है फोन के ऊपर, या ये कि औरतों की तस्वीरें, या ये कि लड़कियों के साथ जो है वो स्कूल के अंदर उसका उठना बैठना है और लड़कियां जो है वो यानी नामुनासिब लिबास वगैरह पहनी हुई है। तो इसको देख करके, इन तस्वीरों को, इन इंसानों को देख करके, उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने ग्लैंड्स बनाए हैं, इस मकसद वाले, शहवत वाले मकसद वाले ग्लैंड्स बनाए, उसकी सिक्रीशन बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी उसकी सिक्रीशन। ये एबनॉर्मल है, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई, अभी क्या करेगा? अब कोई हराम काम करेगा, हराम खोरी करेगा, हराम तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अमल जो है ना, ये नॉर्मली भी बहुत तेज हो जाता है, एबनॉर्मली तो तेज से भी ज्यादा तेज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली भी जो है वो तेज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो है ना, जो कि जवानी की उम्र को पहुंच रहे होते हैं, तो उनको फिर बाकायदा 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, ठीक है, 8 घंटे, 8 आवर्स, ताकि उनके अंदर की ये जो चेंजेस हैं ये सही तरीके से हो सके। जब बच्चा सो रहा होता है ना, बल्कि जब इंसान सो रहा होता है, तो ये वो टाइम होता है कि जिसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर सबसे सुकून होता है फिजिकली। वजअलना लैला लिबासा, अल्लाह ताला रात को फरमाते हैं ये लिबास है, इसके अंदर जो है ना वो तुम मुतमईन रहते हो, बेलिबासी की हालत में इत्मीनान नहीं होता, ठीक है। तो जब लेटे हुए होते हैं ना, तो आपने भी सुना होगा कि बच्चे की ग्रोथ ज्यादा हो रही होती है, छोटे बच्चों को जब भी ज्यादा सुलाना बड़ा जरूरी है, ताकि उसकी बॉडी जो है ना वो बढ़ सके, चलते फिरते हुए उसकी बॉडी नहीं बढ़ती, लेटे सोते हुए उसकी बॉडी बढ़ती है। उसी तरीके से जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती हैं, ये भी सोने की हालत के अंदर नॉर्मल होती है। अब अगर उसको पूरी नींद नहीं मिल रही है, तो फिर नॉर्मल नहीं हो सकेगी, ठीक है। अच्छा, 8 घंटे की नींद, तो मसला सारा का सारा ये है कि अल्लाह भला करे हमारे मोहसिनों का, ठीक है, जिनमें के थॉमस एडिसन, नाउज बिल्ला, हमारा सबसे बड़ा मोहसिन, जिसने बल्ब ईजाद किया, ठीक है ना। अब हमारी जिंदगियों में तो तारीखी थी, रोशनी आ गई, थॉमस एडिसन के बल्ब ईजाद करने के बाद हमारी तारीख जिंदगियों के अंदर रोशनी आ गई, ठीक है। तो अब जब वो रोशनी आ गई है, तो आप सोएं किधर से? अब तो जो है ना वो सोने का टाइम कम, क्योंकि रोशनी खत्म ही होकर के देती है हमारी, ठीक है। तो अब जब देर से सोएंगे, भाई असल में तो जिंदगियों में तारीखी जो है वो रूहानी रोशनी की ना होने की वजह से थी, लेकिन जब रूहानियत खत्म हो गई, तो अब जो है वो मादी रोशनी ही रोशनी रह गई। तो जाहिर है, जब एडिसन साहब ने बल्ब ईजाद किया, तो फिर वो मादी तारीकी जो थी वो रोशनी में तब्दील हो गई, तो हम खुश हो गए, हमने उसको अपना मोहसिन बना लिया, जैसे सारे गोरों को हमने अपना मोहसिन बनाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारी ईजादात करी है, ठीक है। लेकिन फिर वो ईजादात करी, उससे जो है वो हमारी बीमारियां भी पैदा हो गई, बीमारियों का इलाज भी उन्होंने बताया, आप ही हमसे ये वैक्सीन ले दो, हमसे ये दवाई ले दो, इतने पैसे हमें दे दो। तो हमारे मोहसिन कितने बड़े मोहसिन हैं, पहले बीमारी पैदा करते हैं, फिर बीमारी का इलाज पैदा करते हैं, फिर बीमारी के इलाज के जो है हमसे पैसे लेते हैं, और हम जो है वो वारे मैं वारे मैं कुर्बान, हमारी बीमारी का इलाज करवा दिया आपने, मैं वारे मैं कुर्बान जाऊँ आपके ऊपर, ठीक है। तो जब रूहानी रोशनी खत्म हो जाती है ना, तो फिर यही सब कुछ होता है, जैसा कि हमारे साथ हो रहा है, ठीक है। बहरहाल, तो अब जो है ना वो रात को देर से सोएंगे, तो 8 घंटे की नींद कैसे होगी भाई? अब जो है वो दीनदार, तो उनको फजर भी पढ़नी है, तो अब फजर पता चला सोने के 4 घंटे के बाद जो है वो फजर का टाइम हो जाता है, 3 घंटे के बाद समर के अंदर 3 घंटे के बाद ही फजर का टाइम हो जाता है, कभी तो 2 घंटे के बाद ही फजर का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो अब फजर में भी उठ रहे हैं, वरना दीनदार नहीं कहलाएंगे। फिर उसके बाद हजरत को क्या जवाब देंगे? अल्लाह को जवाब तो बाद में देना होगा, हजरत को क्या जवाब देंगे, हम तो फजर ही नहीं पढ़ते, ठीक है। तो फजर में उठ जाते हैं, फिर फजर में उठने के बाद जो है वो, फिर वो दिन की बरकत की भी बड़ी फिक्र होती है, कि सुन्नत जो है ना वो ये है कि सुबह को काम किया जाए, ठीक है। तो अब सुबह को बरकत हासिल करने के लिए जो है वो सोएंगे नहीं, बल्कि बरकत हासिल करेंगे सुबह की, तो नींद किधर से आएगी फिर? जी या तो बरकत ले लो या नींद ले लो। तो हम ज्यादा हम दीनदार लोग हैं, वो बरकत को ज्यादा तरजीह देंगे जाहिर सी बात है नींद के ऊपर। ठीक है, तो फिर जो है ना वो क्या होता है फिर उसके बाद, बेड़ा गरक, बरकत साहब के नाम पे बेड़ा गरक, दीन के नाम पे बेड़ा गरक। कुछ को तो माशाल्लाह तहज्जुद की भी शौक होता है, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ेंगे नींद किधर से होगी फिर। वही तहज्जुद के लिए जल्दी सोना था, नहीं जल्दी तो नहीं सो सकते, टीवी भी देखनी है, गप्पे भी लगानी है, देर से खाना भी खाना है, फलाना भी करना है, ढिमकाना भी करना है, लेकिन तहज्जुद भी पढ़नी है क्योंकि अल्लाह को भी राजी करना है ना साथ साथ भाई। यानी आप थोड़ा सा सोचे ना इन बातों के ऊपर जो मैं बके जा रहा हूँ। नहीं पता नहीं किसके समझ में आ रही है किसके समझ में नहीं आ रही, लेकिन थोड़ा सा सोचे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस रट के अंदर फंसे, हम किस यानी हमने किस चीज को जो है वो खैर समझा हुआ है, किस चीज को हमने बुरा समझा हुआ है, किस चीज को हमने दीन समझा हुआ है, किस चीज को हमने जो है वो दीनदारी समझा हुआ है, किस चीज को हमने इबादत समझा हुआ है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस, ठीक है ना, बट वी आर स्टिल वेरी हैप्पी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में रिकॉर्डिंग सुने बगैर आपको बात समझ में इतना मुश्किल है ना, रिकॉर्डिंग से इंशाल्लाह सुनने की कोशिश कीजिएगा कि हम किस किस्म की मुसीबत में मुब्तला हैं। और उससे बड़ी मुसीबत यह है कि हम इस मुसीबत को मुसीबत मानने से मुनकर हैं, हम इस मुसीबत को मुसीबत मानने का ही इनकार कर देते हैं। ये उससे भी बड़ी मुसीबत है, एक होता है मुसीबत में गिरफ्तार होना, एक होता है मुसीबत को मुसीबत मानने से इनकार करते हैं। हम इस वाली मुसीबत में मुब्तला हैं, ठीक है, नहीं है तो बताइए कैसे नहीं। चले, इन्होंने लंबा सा एक मैसेज लिख दिया, उसको पढ़ लेते हैं कि अभी कुछ देर पहले मेरी भाभी की वालदा का इंतकाल हुआ है, मगफरत के लिए दुआ करिए। कोई
थोड़ा सादा सा वक्त
बात नहीं,
का भी खाना है कि बनाने का आज ही।
म्यूट होने के तौर पे बता। अच्छा, फिर आपने दूसरे किसी ने लिखा है कि क्या ये गर्ल्स के साथ भी होता है, टचिंग और वॉचिंग पिक्स। हाँ, गर्ल्स के साथ अगरचे के ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा कम होता है बॉयज के मुकाबले में, लेकिन आखिर को वो भी इंसान है भाई, वो अगर गर्ल्स के साथ ये ना हो तो फिर नस्ल कैसे चलेगी। ठीक है, आप इतना तो अच्छा हो रहा है आपने तो नहीं। हाँ, ये उधर भी होता है लेकिन लड़कों के मुकाबले में कम होता है। ठीक है, चलें यहाँ पे हम आज क्लास रोकते हैं क्योंकि टाइम जो है वो 7 मिनट ऊपर हो चुका है। तो अल्लाह ताला से दुआएं कि अल्लाह ताला बात का समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमत से हमारे नेक अमलों को से कबूल फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।